यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
और चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग बताते हैं कि आत्मा परमात्मा तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान का कार्य है शुद्ध करना। ऐसा ज्ञान कर्म योग का फल है, ज्ञान जो है कर्म योग का फल है। इस अध्याय में परमात्मा गीता के प्राचीन इतिहास को इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा सतगुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। पहले श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय, ज्ञान सूर्य इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में विवश मनुष्य को कहता है, विवश मनुष्य यानी संस्कार रहित मनुष्य को कहता है। 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उसकी महिमा बताई है। 24वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक फल सहित भिन्न भिन्न यज्ञों का कथन किया गया है और 33वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक ज्ञान की महिमा स्पष्ट की गई है। और इस तरह से भगवान अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका उत्तर भगवान देते हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि सबसे पहले आपने इस ज्ञान किसको दिया था? तब भगवान कहते, इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य से कहा, सूर्य से मनु को यही गीता प्राप्त हुई, मनु ने अपनी स्मृति में संजोया और मनु से इक्ष्वाक को मिला जिसे राज ऋषियों ने जाना किंतु इस महत्वपूर्ण काल में वह लुप्त हो गया। भावार्थ यह है, सूर्य को कहना माना कि जब आरंभ में विवशवान मनुष्य यानी जो संस्कार रहित मनुष्य है, ऐसे पुरुष की सूरा में, सूरा यानी आत्मा जो स्वयं प्रकाशित है, जो सूर्य के समान है, स्वयं प्रकाशित सूरा से सूर्य ने मनु को दिया यानी आत्मा में ही मन है, तो मन को प्राप्त होती है, मन से इच्छा में इक्ष्वाक को, और इच्छा तीव्र होकर जब संस्कारों में ढलकर यह योग क्रमशः आचरण तक पहुंचता है, उस अवस्था में रिद्धि सिद्धियों का संचार होता है संसार के अंदर। क्या आज लोगों को मेहनत नहीं करना है, तुरंत फल चाहिए, और इसलिए जहां रिद्धि सिद्धि है वहां वो तुरंत भागते हैं, कुछ किया नहीं और प्राप्ति हो गई, किसी और ने किया और प्राप्ति हो गई। तो ऐसी अवस्था जब आ जाती है जिसके प्रभाव के कारण ये ज्ञान लुप्त हो जाता है, यानी मेहनत करना कोई नहीं चाहता है, तो इसीलिए ये ज्ञान लोप हो जाता है। तो ये है रहस्य कि सबसे पहले कैसे संस्कार रहित मनुष्य आत्माओं को दिया गया जो स्वयं प्रकाशित सूर्य के समान होती है, पूर्ण आभा वाली होती है, उसने अपने मन में संजोया, मन ने अपनी स्मृति में उसको रखा और स्मृति से फिर इच्छा में ढला, पुरुषार्थ करने की प्रेरणा आती है, और इच्छा में ढल करके फिर क्रमशः आचरण तक भी आता है, अच्छा भी लगता है ऐसा जीवन, लेकिन मेहनत करना नहीं चाहता है, इसलिए रिद्धि सिद्धियों का संचार आ जाता है संसार में और उसके पीछे मनुष्य दौड़ने लगता है। जहां से सहज प्राप्ति बिना मेहनत की प्राप्ति हो जाए वहां बहुत अच्छा, मेहनत कौन करेगा, योग कौन करेगा, या ज्ञान के डेप्थ में कौन जाएगा, इसीलिए वो ज्ञान लोप हो जाता है। और तब परमात्मा को पुनः फिर अपने अवतरण का महत्व बताते हुए कि वह सतगुरु परमात्मा अपने अनन्य भक्त आत्माओं के आश्रित है, फिर भी अपने अनन्य भक्तों के प्रति जो फिर भी पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, ऐसी आत्माओं के लिए आश्रित है। वह जिस सतों पर खड़े होते हैं उसी स्तर पर परमात्मा भी रथी बनकर के आकर के ये उत्तम अविनाशी रहस्य योग वर्णन कर उन भक्तों को डगमगाने से बचाते हैं, संभालते हैं, तभी उसका मन वश में हो पाता है। यानी भगवान ही आकर के मनुष्य के डगमगाते मन को संभाल करके उसको शक्ति प्रदान करता है और ये उत्तम रहस्य पूर्ण योग भी वर्णन करता है और उसके लिए रथी बन करके आता है। अर्जुन के रथ में रथी बना, अर्जुन माना जो अर्जन करने वाली आत्मा है, ऐसा परमात्मा का अनन्य भक्त उसका रथी बनना, क्योंकि ये शरीर भी एक रथ है। इसलिए व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो यही कहा जाता है अर्थी जा रही है, और अर्थी जिस पर रथी सवार नहीं है ऐसा खाली रथ जा रहा है। यानी ये शरीर भी रथ है जिसमें ये पंच इंद्रियां पंच घोड़े के समान है। इसलिए कहा कि भगवान अर्जुन के रथ में विराजमान हुए जिसके पांच घोड़े थे, और रथी बन करके उसको ये उत्तम रहस्य पूर्ण योग का वर्णन करके उसको डगमगाने से संभालते हैं। एक अर्जुन की बात नहीं है, हम सब अर्जुनों की बात है कि जो आत्मा ज्ञान को अर्जित करना चाहती है लेकिन फिर भी कोई कारणवश डगमगाते हैं तो भगवान आकर के उनको संभालते हैं। तब अर्जुन का महत्वपूर्ण सवाल जो आज की दुनिया में कई आत्माओं का भी होता है कि क्या ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने आप सबकी तरह पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं? तब भगवान ने कहा नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है, मैं अजन्मा अव्यक्त शाश्वत हूं। अव्यक्त जिसको व्यक्त शरीर नहीं है, इसलिए तो रथी बनकर के अर्जुन के रथ में आया है। मैं विनाश रहित पुनर्जन्म रहित प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता, यानी मैंने किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। योग साधना द्वारा अपनी त्रिगुणामय प्रकृति को स्ववश करके मैं प्रकट होता, और वो परमात्मा अपने ये वास्तविक स्वरूप को बताते हैं। यानी ये स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन के रथ में विराजमान श्री कृष्ण जो व्यक्त स्वरूप था, उस व्यक्त स्वरूप में अव्यक्त ने प्रवेश किया था। इसीलिए गीता के अंदर कहीं भी श्री कृष्ण वाच नहीं आता है, भगवान वाच आता है, क्योंकि श्री कृष्ण के माध्यम से भी बोलने वाला कौन था? श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाला परमात्मा था जो अजन्मा। इसीलिए भगवान ने अपना वास्तविक परिचय देते हुए यही स्पष्ट किया, मैं अजन्मा अव्यक्त, मैं इन आंखों से नहीं देखा जा सकता हूं। यानी तुम जिसको देख रहे हो वो श्री कृष्ण है, लेकिन मुझे इन आंखों से तुम नहीं देख सकते हो। कितना स्पष्ट है कि बोलने वाला कोई और है श्री कृष्ण के माध्यम से। मैं अव्यक्त शाश्वत विनाश रहित पुनर्जन्म रहित प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं, यानी श्री कृष्ण के तन में मैं प्रकट होता हूं। तो प्रकट होने वाला कौन था? श्री कृष्ण की आत्मा नहीं, प्रकट होकर के बोलने वाला परमात्मा था। इसीलिए कहा भगवान वाच। और जिसकी पूजा भारत भर में हम करते हैं ज्योतिर्लिंगम के रूप में, ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति का स्वरूप है, जो ज्योति का प्रतीक है, वो प्रकाशमान अव्यक्त स्वरूप है जिसकी पूजा हमने ज्योतिर्लिंगम के रूप में किया। इसलिए आज भी भारत भर में 12 ज्योतिर्लिंगम का विशेष महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंगम जो महान तीर्थ स्थान बन गए, जिसको कहते हैं देवों का भी देव महादेव, यानी जिसकी पूजा स्वयं देवताओं ने भी की। इसीलिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आज भी स्थानेश्वर का मंदिर है, जहां दिखाते हैं कि महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण ने भी स्वयं शिव की पूजा की, पांडवों से भी कराई, और उसके बाद हर हर महादेव यानी युद्ध आरंभ हुआ। तो श्री कृष्ण ने शिव की पूजा क्यों किया? अगर श्री कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने शिव की पूजा क्यों किया? इसी तरह रामेश्वरम में चले जाओ, जहां दिखाते हैं कि रावण से युद्ध करने से पहले स्वयं श्री राम ने भी शिव की पूजा की। श्री राम का भी जो ईश्वर है, और उसकी पूजा करके उसके बाद हर हर महादेव, यानी बुराइयों के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करना, हर हर महादेव यानी हरना, समाप्त करना, मिटाना। तो महादेव की शक्ति यानी जो देवों का भी देव महादेव है, जिन देवियों की हम पूजा करते, अम्बा, दुर्गा, ये सब देवियां कौन है? तो कहा जाता है कि संसार में जब असुर बढ़ गए थे तो शिव ने अपनी शक्तियों को उत्पन्न किया था, और असुर संहारनी शिव शक्तियों के रूप में आज भी उनका गायन करते हैं। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वो है महादेव, जिसकी मान्यता संसार में सभी आत्माओं ने की है। मुसलमान धर्म में जाओ तो मूर्ति पूजा में नहीं मानते हैं, परंतु मक्का जब हज यात्रा पर जाते हैं तो वहां काबा का पवित्र पत्थर है जो निराकार है। और इसके पीछे कहानी है कि जब मुसलमान धर्म में परमात्मा के विषय को लेकर के मतभेद हो गया, कहा जाता है कि मक्का के अंदर पहले 186,000 देवी देवताओं की मूर्तियां थी, लेकिन किसकी मूर्ति को स्थापित किया जाए मक्का में, उसके ऊपर झगड़ा हो गया, खून खराबा होने लगा। उस वक्त एक आकाशवाणी हुई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो। और ऊपर से वो पवित्र पत्थर गिरा था जिसकी स्थापना मक्का में की गई, और उसी वक्त वो 186,000 देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट किया गया। और तब से लेकर के इस पवित्र पत्थर की इतनी मान्यता है, जिसका नाम है संगे अश्वत्थ। और इसीलिए मुसलमान लोग मानते हैं कि जीवन में एक बार हज यात्रा पर जाकर के ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। वहां जाकर वो क्या करते, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, और पापों का प्रायश्चित करते फिर अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं, जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है। और वो लाइन है, हे परवरदिगार, नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। परवरदिगार परमेश्वर, नूरे इलाही यानी जो नूर स्वरूप है, जिसको हमने ज्योतिर्लिंगम कहा, उन्होंने नूर कहा, बात तो एक ही है, ज्योति माना भी तेज, नूर माना भी तेज, तो बात तो एक ही हो गई या अलग है? और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म के अंदर कहा जाता, जब मोसेस माउंटेन पर गया, जहां उसको दो पत्थरों पर 10 कमांडमेंट्स मिला, वहां उसको अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसको देख करके मोसेस ने कहा, यहोवा द सुप्रीम लाइट। इसीलिए क्राइस्ट ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, क्राइस्ट ने हमेशा यही कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। और जब उनको क्रॉस पर चढ़ा रहे थे तब भी अपनी अंतिम प्रार्थना में उसने भगवान से यही विनती किया कि हे प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना क्योंकि उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात तो एक ही है या अलग है? आज भी वेटिकन में चले जाओ तो वेटिकन में जो सबसे बड़ा चर्च है उस चर्च के अंदर परम ज्योति परमेश्वर का दिव्य स्वरूप वहां देखने को मिलता है। वो परम प्रकाश, प्रकाशमान स्वरूप, नूर स्वरूप देखने को मिलता है। और आगे जाए तो गुरु नानक देव ने तो बहुत स्पष्ट शब्द में परमात्मा की व्याख्या की है, जितना स्पष्ट और किसी ने नहीं किया कि एक ओंकार निराकार निर्वैर सत नाम अकाल मूरत अजोनी। जो निराकार है, निर्वैर है, वही सत्य नाम है जिसको काल कभी नहीं खा सकता है, जो किसी योनियों में नहीं आते हैं, अजोनी है। और आगे जाए तो महावीर स्वामी ने किसका ध्यान किया? आज भी दिवाली के दिन जब जैनी लोग महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाते हैं तब अपनी प्रार्थना में यही कहते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया वो गति हमें भी प्राप्त हो। वो शिव धाम कौन सा है? वो शिव कौन है जिसको उन्होंने कहा सिद्ध शिलापति सर्वश्रेष्ठ? और उस गति को प्राप्त करने के लिए तीन बिंदु बताए जीवन के रहस्य में, ज्ञान दर्शन और चरित्र। यही सच्ची तपस्या है जिसके आधार पर उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर सकते। इसी तरह महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा की ओर प्रेरित नहीं किया, लेकिन आज भी जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है जिसको कहते करनी का पवित्र पत्थर, जिसका नाम है चिंकुन शेकी, अर्थात जो शांति का दाता है। और पारसी धर्म में चले जाओ तो वहां पर अखंड ज्योत नित्य जलती रहती है, और इसीलिए कहा जाता है कि पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे। और आज भी जब उनकी नई अग्यारी स्थापन होती है जिसको कहते हैं ये फायर टेंपल, जहां अखंड ज्योत नित्य जलती रहती है, तो किसी ने अखंड ज्योत कहा, किसी ने नूर कहा, किसी ने लाइट कहा, किसी ने ज्योति कहा, किसी ने सिद्ध शिलापति कहा, चिंकुन शेकी कहा, तो सर्वधर्म मान्य एक ही यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है परमात्मा का कि वो निराकार स्वयं हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप, जिसका वर्णन भगवान ने अर्जुन को कह करके सुनाया कि हे अर्जुन स्वरूप की प्राप्ति और शरीर की प्राप्ति में अंतर है, मैं कोई शरीरधारी नहीं हूं और इसीलिए मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जाता है। मैं अजन्मा अव्यक्त सदा शाश्वत विनाश रहित पुनर्जन्म रहित प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। तब आगे अर्जुन का एक और प्रश्न आता है कि किन परिस्थिति में और कब प्रकट होते हैं, जो हमारे भी सवाल, ये सब अर्जुन के सवाल यानी हम सब के सवाल है। तब भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब परम धर्म और परमात्मा के प्रति हृदय ग्लानी से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूं और स्वयं अवतरित होता हूं। यहां अवतरण का अभिप्राय पुनर्जन्म लेना नहीं है अपितु पुनः अवतरित होना है। और कैसे अवतरित होते हैं तो भगवान आगे कहते परित्राणायाम साधुना, यानी परम साध्य परमात्मा के समीप ले जाने वाले विवेक, वैराग्य और दैवी संस्कारों को निर्विघ्न इस संसार में प्रवाहित करने तथा दुष्कृत्य के कारक काम क्रोध राग द्वेष इत्यादि विकारों का पूर्ण विनाश करने के लिए और परम धर्म सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ऐसे युगे युगे में प्रकट होता। यहाँ युग का तात्पर्य ये नहीं कि हर युग में सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब युग में आते हैं, नहीं। जब संसार के अंदर दुष्कृत्य के कारक काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि विकार संपूर्ण रूप में हो जाते, फैल जाते हैं, तो उसका विनाश करने के लिए और परम सत धर्म की स्थापना करने के लिए, सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए ऐसे युगे युगे प्रकट होता। ऐसा युग कब होता है? कलयुग। और ऐसा युग जब कलयुग अपने संपूर्ण रूप में आ जाता है, तब परमात्मा भी अवतरित होते हैं और ऐसे युग में आकर अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना करते, सत युग की स्थापना करते। द्वापर युग में अगर भगवान आए तो द्वापर युग के बाद तो कलयुग आता है, तो क्या गीता के ज्ञान से घोर कलयुग की स्थापना होती है? नहीं। लेकिन कलयुग के अंत में ऐसे युगे युगे जब आता है, तब अधर्म का नाश, क्योंकि कलयुग में ही अधर्म अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे युगे युगे आकर के अधर्म का संपूर्ण विनाश और सत धर्म की स्थापना करने अर्थ परमात्मा का दिव्य अवतरण इस संसार में होता है और अपना कार्य करते हैं। तब एक और महत्वपूर्ण सवाल इस अध्याय के अंत में अर्जुन का होता है कि भगवान जब कहते हैं कि मेरा कर्म और मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता है, तो अर्जुन पूछता है, तो हे प्रभु, कौन उसे देख सकता है और समझ सकता है? तो भगवान ने कहा, केवल तत्वदर्शी, यानी जो ज्ञान और तपस्या के बल द्वारा पवित्र बनते हैं और वितराग, भय और क्रोध से मुक्त है, वह मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म को देखता है, यानी मेरा साक्षात्कार कर सकता है। आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस अविभाव को समझ पाता है कि परमात्मा किस अनुरागी में अवतरित होते हैं। बहुत स्पष्ट कह दिया कि ये सबके समझने के बस की बात नहीं है। ये कौन समझ सकता है ये भी बता दिया, और कौन उसको देख सकता है ये स्थूल आंखों से तो देखने की बात ही नहीं है, लेकिन अंतर चक्षु से उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये चौथे अध्याय में भगवान ने अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय दिया। गीता के आगे के सत्रों में हम अर्जुन के आगे के सवाल जो इस बात को लेकर के उत्पन्न होते हैं वो देखेंगे, लेकिन उसके पहले दो मिनट सभी शांति से बैठ जाए तो अब हम उस दिव्य स्वरूप को, परमात्मा के दिव्य स्वरूप को अपने अंतर चक्षु के सामने ले आए और अंतर चक्षु के सामने ले आ करके अपने मन को उसमें एकाग्र करते हैं। एकाग्र करते हुए आत्मा के स्वधर्म में स्वयं को स्थित करें और स्थित करते हुए अपने मन को उस दिव्य स्वरूप में एकाग्र करें। तो अभी चलते हैं एक आध्यात्मिक यात्रा पर, मन की यात्रा पर, और मन की ये यात्रा जो है अपनी वास्तविकता की ओर ले चलते हैं स्वयं को, अपने सतो गुण को विकसित करते हैं और जितना अपने पवित्र स्वरूप को इमर्ज करेंगे अंतर चक्षु के समक्ष, अपने उस दिव्य स्वरूप को देखेंगे, उतना परमात्मा के दिव्य स्वरूप पर ध्यान करना एक सहज हो जाएगा। क्योंकि कल का जो सत्र है वो ध्यान योग है, ध्यान की यथार्थ विधि भगवान बताते हैं, लेकिन इस वक्त हम मन को ले चलेंगे एक यात्रा पर। क्योंकि मन की रुचि क्या है, मन को क्या अच्छा लगता है, मन को घूमना अच्छा लगता है, हर समय मन भटकता रहता है, कहां न कहां भटकता रहता है। तो यही जो मन की रुचि है उसको हम आध्यात्मिकता में ट्रांसफर करते हैं कि मन को ले चलते हैं अपनी वास्तविकता की ओर, आत्मस्थिति में स्थित करेंगे और फिर परमात्मा में। अब ये दिव्य स्वरूप जितना स्पष्ट हो गया तो एकाग्र करना सहज हो जाता है। तो मैं आपको कुछ विचार देती जाऊंगी, आप अपने मन को उन विचारों के साथ साथ अपनी भावनाओं को भी ले चलेंगे और उस दिव्य स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करेंगे। ओम शांति। कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं और स्वयं को आत्मनिश्चय करते हैं। अंतर चक्षु से स्वयं को देखो, प्रकृति की मध्य में मैं अति सूक्ष्म दिव्य आत्मा हूं। यह जीवन एक यज्ञ है, इस यज्ञ में मुझे अपने शुद्ध स्वरूप को प्रकट करना है। अंतर चक्षु से अपने उस शुद्ध स्वरूप को देख रही हूं। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में पवित्र प्रकाशमान दिव्य ज्योति स्वरूप धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि से चलते हैं एक यात्रा पर। आध्यात्मिक यात्रा पर जिसमें मैं स्वयं की उन्नति कर अपने आंतरिक शक्तियों को विकसित करना है। धीरे धीरे मैं ले चलती हूं अपने मन और बुद्धि को पंच तत्व की दुनिया से दूर सूर्य चंद्र तारा गण से भी पार परम धाम में। जहां मैं आत्मा अपने सतोगुणी स्वरूप में विराजमान जहां कोई बंधन नहीं कोई बोझ नहीं, मैं आत्मा स्वतंत्र संपूर्ण मुक्त अवस्था में। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित, मेरा स्वधर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। मेरे चारों ओर शांति के प्रकंपन को महसूस कर रही हूं। शांति मेरा गुणधर्म है। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। जो सुख अति इंद्रिय सुख है, इसी शांति में प्रसन्नता समाई हुई है। एक अलौकिक आनंद है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप इसी शांति में अनंत शक्तियां समाई हुई है। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शक्ति स्वरूप हूं। दिव्य शक्तियों का संचार मैं स्वयं में महसूस कर रही हूं। मैं शांत हूं, शुद्ध हूं, शक्ति स्वरूप। यही मुझ आत्मा की वास्तविकता है। धीरे धीरे मैं अपने मन और बुद्धि को अपने पिता परमात्मा की ओर ले चलती हूँ। जैसे मैं आत्मा दिव्य प्रकाश पुंज हूँ, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी दिव्य तेजोमय है, प्रकाशमान है। चारों ओर दिव्य तेज की प्रभा फैली हुई है। कितना सुंदर स्वरूप है ये। यही सत्यम शिवम सुंदरम। उस दिव्य प्रभा मंडल में परमात्मा का ये तेजोमय स्वरूप कितना अलौकिक है। कुछ क्षण के लिए मैं अपने ध्यान को उस दिव्य स्वरूप पर एकाग्र करती हूँ और स्वयं में उस शक्तिशाली किरणों को महसूस कर रही हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को
वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर, शरीर में, प्रकृति की मध्य में स्थित करती है। मैं आत्मा शरीर की सर्व कर्मेंद्रिय की मालिक हूँ, अधिकारी हूँ। अब मुझे सातों गुणों के प्रवाह को अपने हर कर्म में सर्व इंद्रियों के माध्यम से प्रवाहित करना है और अपने हर कर्म में कुशलता ले आनी है। यही कर्म योगी जीवन है। मैं कर्म योगी अर्जुन। ओम शांति शांति।